ಚಕ್ಷುರುನಿರ್ಮಿತಂ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೈ ನಮಃ. ಕಂಠಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯೈವ ಚ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರಕ್ಷಿತೇ ಗುರವೇ ಗೌರಚಂದ್ರಾಯ ರಾಧಿಕಾಯೈ ಸದಾಲೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಾಯ ಸದಭಕ್ತಾಯ ನಮೋ. आज चार दिनों से यहाँ पर सवेरे शाम भगवत कथा चल रही है, नगर संकीर्तन भी हो रहा है जो कलयुग युग का धर्म है, और भगवत कथा भी खूब चल रही है। भक्तों के घर घर पर भी कीर्तन मंडली जा रही और वो खूब स्वागत सत्कार कर रहे, यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। हम लोग इसके आभारी हैं। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, जहाँ हम जाएं लोग हमारी बातों को सुने। भारतीय वैदिक संस्कृति का लोगों का कुछ बोध हो। धर्म किसे कहते हैं, सनातन धर्म किसको कहते हैं, ये लोग अच्छी तरह से समझें। और मैंने दो तीन दिनों से भक्ति की परिभाषा बतला रहा है, और उसमें उदाहरण के साथ में जैसे कि खूब सरल सहज रूप में लोग समझ सकें भक्ति की परिभाषा, और साथ साथ में उसके उदाहरण भी बतला रहा हूं। हमने अब तक बतलाया तन मन वचन की सारी चेष्टाएं, मन की भावनाएं कृष्ण की प्रीति के लिए हो और कृष्ण को रुचिकर भी हो, भले ही रुचिकर न हो किंतु कृष्ण के प्रीति के उद्देश्य से हो, इसको कहते हैं भक्ति। किंतु यदि इसमें हम कोई अभिलाषा न करें, संसारिक या कोई भी कृष्ण की भक्ति बढ़े, कृष्ण की सेवा मिले, इसके अतिरिक्त जितने प्रकार की कामनाएं वासनाएं हैं संसारिक शरीर से और मन से संबंधित, तो भक्ति उत्तमा नहीं हो करके कुछ मिलावट की हो जाएगी, शुद्ध भक्ति नहीं। साथ ही साथ ज्ञान कर्म योग तपस्या ध्यान इत्यादि जो कुछ भी पद्धतियां भगवान को पाने के लिए कुछ कहीं कहीं बतलाई गई हैं कलि काल में, उन सब को छोड़कर शुद्ध गुरु पदाश्रय कर हरिनाम का संकीर्तन हो, भगवान का तत्व जानकर तो उनकी सेवा की अभिलाषा। इसमें हमने जितनी भी भक्ति के अनुकूल बातें हैं, चीजें हैं, व्यक्ति हैं, पदार्थ हैं, विषय हैं, उनको हमें ग्रहण करना है। उसके लिए हमने भस्म जी का चरित्र और गोपियों का चरित्र सुना है। आज क्या क्या हमें प्रत्याग करना है भक्ति के प्रतिकूल, जैसे कि यदि हम अपने जीवन में करें और भक्ति भी करें तो भक्ति नहीं होगी, नष्ट हो जाती है, उसके संबंध में दो एक बातें साधारण रूप में निवेदन। यदि रुचकर हो तो ग्रहण करें, और न रुचकर हो तो मैं अपनी बातें लेकर के वृंदावन में लौटूंगा, सीधी सी बात, किंतु होगी आपके कल्याण के लिए, भले ही रुचि न हो। दो एक बातें मैं बतलाता हूं भक्ति के अगेंस्ट, भक्ति के प्रतिकूल यदि संग हो तो उसको छोड़ो, पहली बात। यदि कोई ये कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं और मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा या ब्रह्म हो जाऊंगा और ब्रह्म निराकार है, निर्गुण निर्विशेष निरंजन अलख है, ऐसे लोगों का कदापि भूल करके संग मत करो, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। क्योंकि यदि तुम ही ब्रह्म हो जाएगा, जबकि कोई साधक जी शंकर की उपासना कर रहा हो, शंकर की उपासना करता है और करते करने के बाद में ये कहे कि मैं शिवो अहम, शिवो अहम, मैं शिव हो गया, तो दुर्गा जी पार्वती जी दुर्गा का रूप धारण कर खड़ग से उसके सिर को उतार देंगे। अरे कल तक तो तू मुझे मामा कह रहा था और आज तू मुझे बामा कह रहा है, बामा माने गले उतार देंगी। ऐसे शास्त्रों में बहुत निर्देश हैं, इसलिए कभी शंकर मत बनो, पार्वती का पति मत बनो, सब समय पार्वती को मैया बनाओ, कभी ब्रह्म मत बनो। बहुत से लोग आजकल संसार में, अधिकांश भारतवर्ष में जो प्रचार करने वाले हैं वो ये बतलाते हैं कि जगत झूठा है और मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म में मिल जाऊंगा। जगत झूठा है तो तेरी बात झूठी है, तू झूठा है, तेरा सात पुरुष झूठा है। जब जगत झूठा है तो सब ये सब करने की जरूरत क्या साधन भजन की, तो वो भी तो झूठा हो जाएगा। तो तू झूठा होकर के हमारे पास आया है और तू ब्रह्म बन गया तो ब्रह्म भी तू झूठा है, इस चीज को समझो। इसलिए जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म में मिल जाऊंगा, झूठा हूं जगत, उसका संग मत करना। यदि परिवार के लोग हैं तो उनसे पारिवारिक रिश्ते भर रखो, पारमार्थिक कोई संबंध मत रखो। दूसरी बात, जो धन में, पुत्र में, स्त्री में, अवैध स्त्री में बहुत आसक्त है, खबरदारों का संग मत करो, जीवन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। उनकी दी हुई चीजों को भी मत लो, लेने से तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तुम्हारा चित्त शुद्ध नहीं रहेगा, अशुद्ध जो भगवान है तुम्हारे हृदय में नहीं आएंगे। इसलिए दुराचारी लोगों का, झूठ बोलने वाले का, विषयी जो है, अवैध कामी है, उन लोगों के वस्तुओं को ग्रहण मत करो, उनसे कोई अधिक संबंध मत रखो। यदि परिवार के जन है तो उनको विरोध और झगड़ा नहीं करना, उनसे संसारिक जैसा व्यवहार है, चल रहा है चल रहे, परमार्थिक संग मत करो। तुम क्या भजन कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कैसा करना चाहिए, उसको उपदेश मत दो, तुम अपना चीज मन ही मन। एक बात और है, आजकल भारतवर्ष में देवी देवताओं की उपासना छा गई है सर्वत्र। ऐसा कोई घर नहीं है, जो कृष्ण की भी पूजा करते हैं तो वहां पर दुर्गा जी, काली जी, संतोषी मैया, शंकर जी, गणेश जी, पार्वती जी, गणेश जी के बड़े भैया कार्तिकेय जी, जितने भी देवता देवी पृथ्वी के हैं सब घरों की ये चीजें उपासना में ठीक नहीं। इस तत्व को अच्छी तरह से समझना चाहिए। देवता देवी जितने हैं उनकी अवज्ञा और निंदा मत करो, वो भगवान की विभूति और शक्ति है, जगत का संचालन करते हैं। देवता देवी अपना काम बंद करते हैं तो जगत ध्वंस हो जाएगा, भगवान ही उनको बना करके विभूतियों के रूप में सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र इत्यादि को, इंद्र इत्यादि को अपना कर्मचारी बना करके इस जगत की रक्षा। इसलिए निंदा मत करो, एक चींटी की भी निंदा मत करो, मनुष्य की तो बात क्या है, सभी भगवान के दास हैं। अपने स्वरूप को न समझ करके लड़ते झगड़ते निंदा करते हैं दूसरों की, निंदा को सब प्रकार से दूर करो। निंदनीय से भी कोई काम करता है उसकी निंदा करेगा तो उसकी खराब बातें तुम्हारे अंदर में प्रवेश कर जाएंगी। जैसे बिजली यहाँ पर फूकने लगी, बिजली में वहां पर आग लग और तुमने पानी दिया बुझाने के लिए, तो होगा क्या? उसी से पानी से करंट आकर के तुम्हारे लग जाएगा और तुम मारे जाओ, ठीक लेगी। ऐसे ही निंदनीय भी भक्ति है, उसकी निंदा मत करो यदि भजन करना चाहते हो। अनेक देवता देवियों की पूजा मत करो, किंतु निंदा भी मत करो, अवज्ञा भी मत करो। इसी के लिए एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना। कृष्ण जी अभी छोटे हैं, हाँ 5 वर्ष के हो गए हैं, बड़े उत्पाती हो गए हैं, घरों में रोज ही मक्खन चोरी करने के लिए निकल जाते हैं अपने सखाओं के साथ, और कभी पकड़ में आ जाते हैं तो कुछ झूठ भी बोल देते हैं। मैं थोड़े तुम्हारे घर में चोरी करने आया, मैंने समझा ये मेरा घर है, यदि और किसी ने पकड़ लिया कह जैसे मैंने चोरी थोड़े कर रहा था, हमारा बछड़ा कहीं खो गया था और वो बछड़े को ढूंढ रहा था, तो तेरा बछड़ा हमारे यहाँ आया, कहाँ देखो तुम्हारी हड्डियां में कूद गया और उसमें से एक मार्बल पत्थर का खिलौना जो बाबा ने दिया था ये मेरा बछड़ा था, कूद गया था, इसी को ढूंढ रहा। इस तरह से बचपन में सब लोगों का प्रति आकर्षण कर रहे थे। एक दिन की बात है, नंद बाबा की गोदी में रहते, मैया किसी काम में लगी थी, पूरा पूरी छन रही थी। नंदलाल ने पूछा, पिताजी आज मैया बड़ी व्यस्त है, दूध भी नहीं पिला रही, बात भी नहीं कर रही, और रसोई पर जो सवेरे बैठी अभी अभी तक नहीं उठी, किस लिए क्या कर रही? आज मेरा जन्मदिवस है क्या? अरे नहीं बेटा, तेरा आज जन्मदिवस नहीं है। तो क्या है? अरे आज ब्रज भर में ऐसे ही उत्सव हो रहा है और सभी लोग गोवर्धन की इंद्र की पूजा करने जाएंगे और उनको खुश करेंगे। तो बेटे ने कहा, कृष्ण ने, पिताजी इंद्र की पूजा क्यों होती है, इंद्र कौन है? तो इंद्र वर्षा देने वाले देवता है, वर्षा नहीं होने से कृषि नहीं होगी, गाय को घास नहीं मिलेगी, आदमी का जीवन नहीं रहेगा, हम लोग पानी नहीं पी सकेंगे, सभी लोग मर जाएंगे, इसलिए जल जीवन है इसको देने वाले इंद्र हैं, इंद्र की पूजा होनी। पिताजी बहुत बहुत दूर देशों में जहां इंद्र की पूजा नहीं होती वहां पर वर्षा कैसे होती है और वहां के लोग कैसे जीवित रहते हैं? वर्षा तो इंद्र के द्वारा नहीं होती, ये तो गोवर्धन की कृपा से होती, मेघ उमड़ घुमड़ कर आते हैं और गोवर्धन से टकरा करके वर्षा। यहाँ पर वन है, वनों से मेघ बनते हैं और उसकी शीतलता से वर्षा होती है, इसलिए गिरिराज गोवर्धन ही गो को वर्धन करने वाले, गोपियों के वर्धन करने वाले, गोपों के वर्धन करने वाले, गोप गोपियों और गायों और सब ब्रजवासियों का जीवन दान करने वाले ये गिरिराज गोवर्धन है, इनकी पूजा होनी चाहिए, इंद्र की पूजा से कोई लाभ। नंद बाबा इसका कोई उत्तर तर्क के द्वारा नहीं दे सकते, बात तो ये ठीक आता है छोटा सा बच्चा, अच्छा सर ठीक, आज मैं घोषणा कर देता हूं जो कुछ बन रहा है इससे इंद्र की पूजा नहीं होकर के गोवर्धन की पूजा होगी। और ऐसा ही हुआ, सारे ब्रज में छकड़े भरकर बड़े बड़े बर्तनों में पुआ मालपुआ पूरी कचौड़ी रोटी घी लगी हुई, मक्खन मेवा तरह तरह के आचार और सब, 56 कहा जाता है, 56 नहीं, 56 भोग केवल नहीं, 365 तरह के वस्तुएं बनी और वो सभी लेकर के गोवर्धन में गए और वहां पर ठाकुर जी को भोग लगाए। कृष्ण इतने में दो बन गए, एक तो जैसे बच्चे के बेचारे और एक पर्वत पर ऊपर में खड़े होकर के चतुर्भुज रूप धारण करके विशाल रूप धारण किया। बोले जी बाबा देखो ब्रजवासी लोग, आज तक इंद्र ने कभी दर्शन दिया तो नहीं, तो देखो तो हमारे ठाकुर जी गिरिराज गोवर्धन कैसे दर्शन दे रहे हैं। कृष्ण ने ये सब अपने हाथों से उनको आरोगा और एतद् नैवेद्यम ओम गिरिराजाय नमः, और गिरिराज जी का ओम गिरिराजाय नमः, ओम गिरिराजाय, और साथ ही साथ उनकी लंबी लंबी भुजाएं, असंख्य भुजाएं, चार जिसमें प्रधान एकदम वहां से पूरी और कचौड़ी सब मिनटों में सब कुछ खा लो। मानसरोवर का कुसुम सरोवर, मन की गंगा इत्यादि में जितना पानी भरा हुआ था वो सब पी गए, और देखा जब कुछ नहीं आए तो बोलने लगे आनोरे आनोरे आनोरे, आनोरे मैंने क्या और ले आओ रे, आनोरे ब्रजभाषा आनोरे आनोरे करने लगे। कृष्ण ने हाथ जोड़ दीजिए और बोले जे प्रभु आपके पीठ में तो ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड समा सकते हैं, आपकी पेट को कौन भरेगा, हम ब्रजवासी लोग गोप हैं, हम लोग नहीं भर सकते, इसलिए जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट हो जाएगी। इतने में उन्होंने पानी पी करके और डेकार दिया, बर मांगो ब्रह्म ब्रूही ब्रह्म ब्रूही, सब लोगों ने मिलकर के सामूहिक रूप में ये मांगा कि नंद के जो लाला है ये चिरजीवी हो, इसके सारे विपत्तियां दूर हो जाएं, बचपन से ही इस पर बड़े संकट आते हैं, कहने कैसे ये बचता है, इसे हे गिरिराज जी आप इसके संकट दूर करें। किंतु ये कहने वाले कौन हैं, स्वयं कृष्ण ही। इसके बाद में पूजा जब समाप्त हो गई, लोग खाते पीते गोवर्धन की परिक्रमा की, जो चल नहीं सकते छकड़ों में गाड़ियों में बैठकर भगवान का नाम करते हुए और कीर्तन करने और परिक्रमा करने। जब परिक्रमा समाप्त हो गई और शाम हो गई, सब लोग अपने अपने घरों में चले गए, उस समय में देवलोक में स्वर्ग में एक आपत्ति की क्या कहते हैं घोषणा की गई, आपत्तिकालीन घोषणा की गई, आपत्तिकालीन घोषणा की गई। इसमें जितने प्रधान प्रधान देवता हैं सभी बुलाए गए, इंद्र ने बुलाया क्योंकि देवेंद्र हैं। उसमें उन्होंने गणेश जी की पूजा सबसे होती है, गणेश जी को बुलाया, उनके भैया को बुलाया कार्तिकेय जी, उनकी मैया दुर्गा जी को बुलाया, उसमें काली चंडी दुर्गा और यहां तक कि संतोषी मैया इत्यादि सभी उसमें उपस्थित हुए, और उधर में शनि सोम मंगल ये जितने हैं ये सब लोग उसमें उपस्थित हुए। उसमें प्रस्ताव किया इंद्र ने, देखो भाइयों देवताओं अब तक हमारी पूजा जगत में चल रही थी, किंतु ये गोप लोग घमार गोप जिनको अकल नहीं होती है, भैंस गाय चराने के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते हैं, कभी पवित्र नहीं होते, जूठे खाते चलते फिरते हैं, और इन नादान लोगों ने बाचार और मूर्ख गोपों ने हमारी पूजा बंद कर दी, इतनी इनकी है कड़ी, हम लोगों को रहते हुए हमारी पूजा न हो। अब आप लोगों का परामर्श चाहता हूं, ये क्या इसमें करनी चाहिए, आप लोग सभी हमें परामर्श दें और सम्मिलित होकर के ही हम लोग प्रस्ताव पास करेंगे और जैसे होगा ब्रज का ध्वंस कर देंगे। सब लोग गणेश जी सबसे पहले उठे, चून उठाया और बोले भाइयों ये ठीक कह रहे हैं, हमारी पूजा घर घर में होती थी, जब उपनयन होता था, जब घर में विवाह शादी होती थी, जब कभी नामकरण होता, कभी अन्नप्राशन होता, कभी घर गांव में कोई भी काम होता तो सबसे पहले मेरी पूजा होती थी, इन ब्रजवासियों ने हमारी पूजा बंद कर दी। इतने में दुर्गा जी जरी बाचाल होकर के बोलने लगी, ठीक कहते, अरे ऐसा कोई पर्व नहीं जो मेरी पूजा नहीं होती थी ब्रज में और संसार में। मेरी पूजा के बिना न घर घर में पूजा होती थी, यहां तक कि रामचंद्र जी के जन्म के दिन भी राम की कोई पूजा नहीं करता। किसकी पूजा करता है? नव दुर्गा का पूजा करता है, दुर्गा जी का चालीसा पाठ होता है, दुर्गा जी के मंत्र होते हैं, दुर्गा जी की प्रतिमाएं बनती हैं। विशेष करके पंजाब और बंगाल में तो ऐसा कोई घर नहीं है जो नहीं होती। नए नए कपड़े पहन करके लोग बड़ी उत्कंठा से मदिरा का भी भोग दे करके मांस का भी भोग दे देंगे और सब उनकी पूजा होती है। अब मेरी पूजा भी इन लोगों ने, ब्रजवासियों ने छोड़ दी। मुझे बड़ा मलाल था इस विषय का, किंतु मैं क्या करूं। इतने में शनिदेव पहुंचे। भाइयों ये बात ठीक है, सड़कों में रास्तों में मोड़ों पर हमारी पूजा होती थी, ड्राइवर लोग पैसे भी दे जाते, सर्वत्र मेरी पूजा होती थी, मेरी पूजा भी बंद कर दी। इतने में सोम जी आए। सोम कौन है जानते हैं? सोमवार को जो उपवास करते हैं, शिव जी। वो बोले जो ठीक है, अब मेरे मुझे पूछता नहीं, मेरी पूजा नहीं होती। इसी तरह से सब देवता लोग मंगलवार आए, मंगल को उपवास करते हैं, कोई शुक्रवार को, कोई कुछ, कोई कुछ उपासना। भगवान को लोग भूल गए, इन्हीं की उपासना चलती है। तो ये लोग अपनी अपनी बात कहे और अंत में ये तय हुआ, हम सब सम्मति से ये स्थिर करते हैं कि हमारे राजा देवराज इंद्र हैं और इन पर हम दायित्व भार देते हैं, इन हैकड़ी गोपों को, निर्बुद्धि गोपों को और ब्रजवासियों को अच्छी समुचित शिक्षा दें और उसमें हमारी जरूरत होगी तो हम भी उसमें चलेंगे उनको शिक्षा देने के लिए। इसलिए नारद इंद्र जी बड़े उत्साहित हुए और उत्साहित होकर के संवर्तक मेघों को बुलाए। कितने प्रकार के संवर्तक और मेघ सब हैं, जो प्रलय काल में मूसलाधार वर्षा करने वाले और 49 प्रकार के वायु हैं, 49 पवन, 11 रुद्र, सबको बुलाए। आज ब्रज को मटिया मेघ कर देना है, ब्रज का निशाना नहीं रहना चाहिए। जो स्थान मथुरा में ऊंचे पर है, नंदगांव में पहाड़ी के ऊपर है, बरसाना के ऊपर में पहाड़ी पर बसे हैं, इनका भी नाम निशाना न रह जाए। आज गोप जाति का ब्रज से निशाना मिटा देना है और जिस गोवर्धन की पूजा हुई उसको हम वज्र से तोड़कर उसको चकनाचूर करके अणु बना देंगे, उसके मेटिया मेट कर देंगे, उसका चिन्ह नहीं रहने देंगे। देखे तो जो ये पूजा करने का फल क्या है, ऐसा करके आदेश दिया और 7 दिनों तक मूसलाधार बरसा रही। सारा ब्रज अब डूबने लगा, 49 पवन बहने लगे, सब लोग ठंड के मारे चिथुरने लग गए, गाय बछड़े तक भी चिथुरने लग गई और ब्रजवासी जितने थे, स्त्रियां पुरुष बच्चे हाहाकार कर उठे। घर जितने थे उनके मिट्टी के सब ढह गए, गिर गए। छिपाने के लिए कोई जगह नहीं रही। उस समय में सभी नंद भवन में गए गुहार की, नंद बाबा आपने ये क्या करा है, आज हमारी क्या दुर्दशा हो रही है, आप हमारी रक्षा करें। कृष्ण भी बैठे थे, कोई चिंता मत करो, जो जहां है वहीं से अभी गिरिराज पहुंचो। जिस गिरिराज की पूजा जी के लिए है वो सर्वसमर्थ है, सबके संकट को हारेंगे, चलो वहीं पर चले। जितने ब्रजवासी थे अपने सारी गऊओं को लेकर के, बच्चों को लेकर के, बछड़ों को लेकर के, जो कुछ सामान था जो ले सकते थे लेकर के गोवर्धन में पहुंचे। पहुंचे और कृष्ण ने सबके देखते देखते हैं मुस्कुराते हुए बाएं हाथ से दाएं हाथ से बंसी बजाते हुए और गिरिराज को कब उठा लिया पलकों में कोई पता नहीं, और उठा करके छत्र के समान अपने पैरों में। और कहा ये सभी गिरिराज की छत्र छाया में आ जाओ, किसी प्रकार का भय नहीं है। इतना बड़ा गड्ढा, उसमें एक तल्ला, दो तल्ला, तीन तल्ला, चौ तल्ला, पांच तल्ला, 100 कितना 51 तल्ला जो अमेरिका में घर होते हैं, उससे सुविधाएं वहां पर हो गई। गिरिराज गोवर्धन ने बनाया और ब्रज के असंख्य लोग, गायें भी असंख्य, केवल नंद बाबा की 7 लाख गायें, 9 और विश्वभानु महाराज की तो 11-9 20 लाख तैनी के गाय होंगे, और जो लाखों गोप हैं इनके लाखों संख्या में गायें और बछड़े और ब्रजवासी लोग सब उसके अंदर में चले। जितने बढ़ते गए गोवर्धन इतने बढ़ते गए, और उनका बाल भी बाका नहीं, 7 दिनों तक मूसलाधार पानी बरसा और बिजली कड़कती रही, विद्युत गिरते रहे। गोवर्धन को चूर्ण करने के लिए वज्र चलाया गया, किंतु उनको कृष्ण को गोवर्धन को धारण करने पर गोवर्धन को इतना आनंद हुआ जो उनको केवल खुजलाहट हो रही है, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा, बड़ा आनंद आ रहा है कृष्ण उनको धारण कर रहे हैं। उस समय में गोपों ने देखा, सखाओं ने, ये कृष्ण तो अभी छोटा हम ही जैसा है, भाई क्यों नहीं लटकिया का तेल लगाए, तेल माने क्या, लटकिया लगा दें जैसे ये गिरे नहीं, नहीं तो ये छोटा सा बालक हम जैसा है ये गिर पड़ेगा पत्थर। इसलिए सब जितने असंख्य बालक थे उन लोगों ने लटकिया लगा दी गोवर्धन को, और जो गोपियां थी सहेलियां उन लोगों ने क्या की, गिरिराज को अपने नजर पर टांग दिया, गिरिराज यदि तू गिर जाएगा तुम्हें चकना चूर करके भस्म कर देंगे, इसलिए ठीक खड़े रहो, कृष्ण के ऊपर में तनिक भार न हो। इस गोवर्धन को धारण किसने किया, कृष्ण ने धारण किया मालूम होता है किंतु नहीं, कृष्ण के बाएं तरफ में कौन है, राधारानी है ना, इसलिए कृष्ण अपने तरफ में और ये चारों उंगलियों को छोड़ करके कनिष्ठ उंगली पर, अतः तो राधा जी ने इसको धारण, और खूब चहल पहल हो रही, बंसी बज रही, वहां पर नित्य गान इत्यादि भी हो रहा है। आज जो गोपियां बहुत दिनों तक 5 वर्ष तक की हो गई हैं, कृष्ण से नहीं मिली थी, आज भी कृष्ण के निकट आकर के बड़े प्रेम से मिल रही है। जो सुधा मैया अपने बेटे को देख करके बड़ा लाड प्यार करने लगी, नंद बाबा हमारा बेटा इतना पहलवान है जो इसने गोवर्धन को धारण कर लिया, किंतु किसी के मन में ये नहीं हुआ कि ये परब्रह्म है, साधारण गोपचंद, यही ब्रज का माधुर्य है। 7 दिन हो जाने के बाद में इंद्र ने पवन देव को भेजा, जरा देखो तो ब्रज की क्या स्थिति है, ब्रज में कोई चिन्ह तो नहीं, ब्रजवासी सब समाप्त हो गए, गायें सब नष्ट हो गईं, बड़ी बड़ी पहाड़े सब नष्ट हो गए। वो वहां पर पहुंच करके देखा, अरे ये तो बड़े चैन की बंसी बजा रहे हैं सभी, बड़ा आनंद हो रहा है, पूरी पकवान सभी लोग खा रहे हैं और बड़े आनंद के साथ में है, 7 दिन तक उनका कुछ भी नहीं जोड़ा, और गोवर्धन जी जैसे के तैसे हैं। इतने में ब्रह्मा जी की आकाशवाणी, रे इंद्र अपने ध्वंस पर मत मचाओ, सावधान हो जा, उसको छोटा गोप बालक मत समझो, वो समस्त ईश्वरों का ईश्वर, परमेश्वर का भी परमेश्वर है, समस्त कारणों का कारण है ये छोटा सा बालक, नहीं तो पुत्र को चुटकी बजाते मार देता और असुरों को मारा, ये कभी संभव है, इसलिए साधारण मत समझो, ये तुम लोगों का दर्प अभिमान नष्ट करने के लिए इसने ऐसा किया है, जल्दी से क्षमा मांगो, और क्षमा तुमको नहीं करेगा, गौओं की माता सुधी को अपने साथ ले जाओ, और वो यदि क्षमा मांगे तो उनको देख करके उसका हृदय द्रवित हो जाएगा, क्योंकि गाय को मैया कहता है, क्योंकि उसका दूध पीता है, इसलिए उसको ले जाओ। सुधी को साथ ले आए और वहां पर पहुंचे, इंद्र के सामने स्वयं नहीं गए, गो माता को भेजा सुरभि को, और उन्होंने कृष्ण को प्रसन्न किया। नारद अबोध एक बालक है, वो समझता था कि मैं वर्षा देने का मैं मालिक हूं, पृथ्वी का मालिक हूं, किंतु एक आपकी छोटी सी विभूति का भी, विभूति का भी कला का एक कण मात्र है, अब आपको यह समझ रहा है, इसलिए आप इसको क्षमा करें, और यह कहता कि अपने दूध के धार से कृष्ण का अभिषेक कराए इंद्र जी और उनसे प्रार्थना की और तब उनकी रक्षा की। तब से उन्होंने समझा, तात्पर्य इसका ये है, ब्रज में जहां पर स्वयं कृष्ण है उस कृष्ण के सामने जैसे हम यहाँ के प्रेसिडेंट के सामने उसके चपरासी को यदि हम पूजा करें उसके गले में माला दें और प्रेसिडेंट को ना दें तो क्या होगा? अपमान होगा। ऐसे सर्वेश्वर ईश्वर कृष्ण ब्रज में है और उनके यहाँ देवता देवियों जो उसके चपरासियों के भी चपरासी होने योग्य नहीं है ऐसे देवताओं की यदि पूजा होती है तो ये कृष्ण की अवज्ञा होती है, इसलिए भक्ति में ये विरोधी है। इसलिए इंद्र की ही पूजा नहीं, ब्रज में किसी भी देवता की उपासना नहीं होती। उपासना होती है गिरिराज की, उपासना होती है राधा कृष्ण की। इस सत्य को समझें, वहां हनुमान जी भी डर के मारे नहीं आते, थर थर कांपते हैं। इसलिए यदि यशोदा मैया ने हमारे इष्ट देव कृष्ण को यदि